हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रात के 2 बजे वेदांत की गाड़ी निमानी हाउस के सामने आकर रुकी। अनाही वेदांत को संभालते हुए अंदर ला रही थी, क्योंकि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शायद बहुत ड्रिंक कर रखी थी उसने। कार से जल्दी से एक ड्राइवर आया और अपने हाथ में पकड़ी चाबी अनाही को देते हुए वहां से चला गया। अनाही का पूरा चेहरा हल्के गुस्से में लाल था। वो वेदांत को संभालते हुए अंदर लेकर जा रही थी। कुछ देर बाद अनाही वेदांत के कमरे के सामने थी। उसने दरवाज़ा नॉक किया और फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, कितने भारी हैं आप, क्या ज़रूरत थी ड्रिंक करने की? वेदांत ने मुश्किल से आंखें खोलने की कोशिश की और गर्दन घुमाकर अनाही को देखा। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही विहा ने अपनी नींद भरी आवाज़ में दरवाज़ा खोलते हुए कहा, कौन है इतनी रात को? और उसने सामने जैसे ही वेदांत और अनाही को इस तरीके से देखा, घबराहट के मारे उसकी आंखें फैल गईं और उसने दूसरी तरफ से वेदांत को संभालते हुए कहा, इन्हें क्या हुआ है दी? अनाही ने कुछ पल उसका जवाब नहीं दिया। वो दोनों वेदांत को कमरे के अंदर ले गईं। अनाही ने वेदांत को बेड पर बैठाते हुए कहा, संभालो अपने बेवड़े पति को। अनाही की बात सुनकर विहा को समझ में आया कि वेदांत ने ड्रिंक कर रखी है। उसके बाद उसने वेदांत को गुस्से में देखा तो वेदांत उसे प्यारी सी स्माइल लिए देख रहा था। वेदांत ने विहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, टोमेटो, हाउ आर यू, कैसा गया तुम्हारा दिन? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वहीं अनाही ने गुस्से से वेदांत को देखते हुए कहा, आगे से मैं उनके साथ कभी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, हद होती है। अब तू सो जा आराम से और अगर ये ज़्यादा बकवास करे तो तुम मुझे बुला लेना, ठीक है? विहा ने हाँ में सर हिलाया और अनाही तेज कदमों से वहां से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद जहां अनाही को लग रहा था कि अब तो वो शांति से सो जाएगी, कुछ ऐसे ही बेड पर बैठी उसे बालकनी से बिल्ली के बोलने की आवाज आने लगी और अनाही ने अफसोस से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अब ये शुगर बेबी मुझे नहीं सोने देगी। अनाही तेज कदमों से चलती हुई बालकनी में गई तो उसने देखा शुगर के सामने ठीक उसी की साइज का एक बिल्ला बैठा था। चुप, बिल्कुल काले रंग का था। उसे देखकर अनाही ने अपने माथे पर हाथ मालते हुए कहा, हे भगवान, क्या करूं है इसका? कुछ सोचकर अनाही उनके पास गई और फिर दोनों को ही अपने हाथ में उठाते हुए कमरे के अंदर ले आई। उसके बाद वो तेज कदमों से उसे कमरे में गई जिसमें शुगर हमेशा रहती है। उसने दोनों को उस कमरे में छोड़ते हुए कहा, शर्म नहीं आती खुलेआम रोमांस करते हुए, यहाँ रहो तुम दोनों। इतना बोलकर अनाही ने उनको उस कमरे में बंद कर दिया और फिर खुद बाथरूम में चली गई खुद को साफ करने के लिए, क्योंकि उसे बिल्ली के बाल अपने ऊपर बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विहा सहमी हुई सोफे पर बैठी थी और टुकुर टुकुर वेदांत को देख रही थी, जो बेड पर बैठा गर्दन टेढ़ी किए उसे देख रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही चल रहा था। वहीं विहा मन ही मन बस प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भी वेदांत को नींद आ जाए। अचानक ही वेदांत बेड से उठा और लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए विहा के पास आया। वो नीचे फर्श पर विहा के पैरों में बैठते हुए उसकी गोद में अपना सर रखकर बोला, टोमेटो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जबकि जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे तुम बहुत ही अजीब सी लगी थी। लोग सही कहते हैं, प्यार इंसान को अंधा बना देता है और उसे इंसान की सारी कमियां छुप जाती हैं, जिसे एक बार प्यार हो जाता है। पर मुझे तुमसे प्यार हुआ ही नहीं, फिर ये किस नाम की पट्टी बांध गई है मेरी आंखों के सामने। वेदांत जो भी बोल रहा था वो शौक की स्पीड से विहा के बगल से निकल रहा था, क्योंकि विहा उसकी बातों को समझने की बजाय उसके हाथों की हरकतें देख रही थी, जो कभी उसके थाइस पर घूम रहे थे तो कभी उसकी कमर पर। विहा ने मुश्किल से उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, मुझे आपका छूना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, प्लीज आप सो जाइए, हम सुबह उठकर बात करते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई है। विहा की बात सुनकर वेदांत ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, ऐसे कैसे, जब तुम मुझसे बातें करती हो, जब मैं तो अपनी नींद को छोड़कर तुम्हारी बातें सुनता हूँ, और अब जब मुझे बातें करनी है तो तुम्हें नींद आ रही है, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं सोने दूंगा। विह की ये धमकी भरी आवाज सुनकर डर गई और वो रोनी शक्ल बनाकर बोली, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुबह उठकर आपको जो भी बात करनी होगी मैं सारी बातें सुनूंगी, पर अभी नहीं, अभी आप होश में नहीं हैं, पता नहीं सुबह आपको ये सब याद भी रहेगा या नहीं। वेदांत उठा और सोफे पर उसके बगल में बैठकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, टोमेटो, हमने अभी तक अपनी फर्स्ट नाइट नहीं सेलिब्रेट की है और तुम मेरी पत्नी हो। इतना बोलते हुए वो उससे अलग हुआ और उसके गले में मौजूद मंगलसूत्र को अपने हाथों से छूते हुए बोला, तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र भी पहनती हो, चलो आज हम अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करते हैं। इतना बोलकर वो विह के होठों की तरफ झुकने लगा, जिससे विह और भी ज्यादा डर गई और वेदांत के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, प्लीज वेदांत, जे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शायद यही बात अगर वेदांत होश में होता तो वो बोलता तो विह खुशी खुशी उसे खुद को सौंपने के लिए तैयार हो जाती, पर फिलहाल उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। घबराहट से उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थीं। वेदांत ने गुस्से में उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, ये तो मेरा हक है ना, तुम मुझे कैसे रोक सकती हो, और तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगा। इतना बोलकर वो फिर से विह के चेहरे की तरफ झुकने लगा। विह को उसकी गर्म सांसें अपने होठों पर महसूस हो रही थीं, जिससे उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। हिम्मत करके विह ने वेदांत को जोर से धक्का दिया, जिससे वेदांत सोफे पर पीछे की तरफ लुढ़क गया और विह फुर्ती से सोफे से उठ खड़ी हुई और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, देखो मैं शोर मचाने लग जाऊंगी, फिर यहाँ सासू माँ और दी दोनों आ जाएंगे, और रोहान जी, वो भी इस फ्लोर पर वे लोग रहते हैं, और उसके बाद वो आपकी बहुत पिटाई करेंगे कि आपने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की है। विह को खुद नहीं पता था हड़बड़ाहट के मारे वो क्या ही बोल रही है, पर उसे फिलहाल वेदांत से डर बहुत लग रहा था। वेदांत भी सोफे पर से उठा तो वो टेबल से टकरा गया। टेबल पर मौजूद सामान फर्श पर जा गिरा, जिससे विह डरते हुए पीछे हटकर बोली, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सो जाइए, अभी आप नशे में हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, आपका जो भी हक है आप होश में आने के बाद ले लीजिएगा, मैं आपको मना नहीं करूँगी। इतना बोलने के साथ ही बेबसी से विह की आंखों में आंसू आ चुके थे। विह की आंख में आंसू देखकर वेदांत बेचैन होते हुए कहा, टोमेटो, तुम रोने क्यों लग गई हो, इधर आओ मेरे पास। इतना बोलकर उसने अपनी बाहें फैलाई तो विह ने तीन चार बार ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, कभी नहीं, मैं आपके पास बिल्कुल नहीं आऊंगी। इतना बोलकर विह ने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, पर उसे कहीं भी भागने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो तुरंत ही बालकनी की तरफ दौड़ पड़ी और बालकनी में जाकर उसने ग्लास डोर को अपनी तरफ से बंद कर लिया और उसके बाद सीने पर हाथ रखकर लंबी सांस भरते हुए कहा, थैंक गॉड, बच गई। पर अचानक ही उसका दिल धक से रह गया जब वेदांत ने ग्लास डोर को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वो विह को अंदर बुला रहा था। वेदांत ने वहीं ग्लास डोर से पीठ लगाकर बैठते हुए कहा, टोमेटो, प्लीज अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। पर विह को ठंड में रहना मंजूर था, पर वेदांत के सामने बिल्कुल नहीं। विह ने घबराते हुए अपने कदम बालकनी की रेलिंग की तरफ बढ़ा दिए। वो बालकनी के आखिरी कोने में बैठते हुए खुद में सिमट कर बोली,
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वेदांत मेरे साथ ऐसा भी बिहेव कर सकते हैं। इतना बोलते हुए विह ने घुटनों में अपना चेहरा छुपा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले।